हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन अगर धर्म पोती बनने के बाद वो खुराना मेंशन में रहती है तो हो सकता है कि मिसेज उर्वशी खुराना झलक को काफी सारी दौलत दें, तो वो भी ओबेरॉय परिवार को मिल जाती, तो उनका मान सम्मान और इज्जत बढ़ जाती। तो यही सोचकर उन्होंने झलक को अपनाने का फैसला किया था, लेकिन अब यहाँ आकर उन्हें बेइज्जती के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। फिलहाल उन्होंने अब जल्दी से दादी से वहाँ से जाने की इजाज़त मांग ली थी, क्योंकि आए तो थे वहाँ पर झलक को लेने के लिए। लेकिन अब इस तरह का दादी का व्यवहार देखकर उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उन्हें कह सकें कि वो झलक को उनके साथ भेज दे। फिलहाल वो लोग वहाँ से विदा लेकर बाहर चले गए थे। कुछ देर बाद दादी ने झलक को चमकती हुई आंखों से देखते हुए कहा, मेरी बच्ची, मुझसे मिलने के लिए आती रहना। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, क्योंकि दादी ने झलक को इंसिस्ट किया था कि वो उसके साथ ओबेरॉय परिवार से दूर खुराना मेंशन में ही रहे। लेकिन झलक ने साफ साफ बता दिया था कि वो किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। जब तक वो कामयाब नहीं हो जाती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक उसे ये लड़ाई अकेली ही लड़नी होगी। और दादी उसे प्यार करती हैं, ये उसके लिए सबसे खुशकिस्मती है। और उसे खुराना परिवार का कोई भी रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ दादी का प्यार और दुलार ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब दादी ने डिसीजन ले लिया था कि अब झलक सिद्धार्थ के साथ रहेगी तो अच्छा है, क्योंकि दादी समझ चुकी थीं कि वो ओबेरॉय परिवार झलक को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए अगर झलक सिद्धार्थ की सुरक्षा में रहेगी तो उसे खरोच तक नहीं आएगी। और वैसे भी सिद्धार्थ अपने ऑफिस के पास ही, जो उसने नाइट क्लब शेड बार बना रखा था, उसी के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहा करता था, तो झलक भी उसके साथ वहीं रहने वाली थी। फिलहाल अब मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय के जाने के बाद सिद्धार्थ और झलक ने भी अब दादी से विदा ली थी, और दादी ने झलक के माथे को चूमकर उसे विदा किया था और याद दिलाते हुए बोला था कि वो उसे हर दूसरे तीसरे दिन मिलने आएगी। झलक ने भी उनसे मिलने का वादा किया और फटाफट से वो लोग वहां से बाहर निकल गए थे। उस वक्त ओबेरॉय परिवार भी बाहर ही मौजूद थे, क्योंकि खुराना मेंशन से निकलकर सबसे पहले गार्डन आता था, उसके बाद थोड़ी दूरी पर चलने पर मेन रोड आती थी। खुराना मेंशन पूरी तरह से चारों तरफ से पेड़ पौधों और हरे भरे वादियों से घिरा हुआ था, जो बड़ा ही खूबसूरत था। फिलहाल अब वो सब लोग पैदल चलकर कार की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी मिस्टर ओबेरॉय ने सिद्धार्थ की ओर हल्की मुस्कान से देखकर कहा, मिस्टर खुराना, मुझे लगता है कि आपकी सगाई हुए काफी दिन हो चुके हैं, तो अब आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए और आकांक्षा से आपको शादी कर लेनी चाहिए। ये बात सुनकर न जाने क्यों सिद्धार्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। झलक भी वहां मौजूद थी। ये सुनकर वो सीधा जाकर इधर उधर टहलने लगी थी, लेकिन ठीक उसी वक्त आकांक्षा भी मुस्कुराते हुए वहां पहुंची। लेकिन तुरंत सिद्धार्थ बेबाकी से जवाब देते हुए बोला, अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं बता दूंगा। अब सिद्धार्थ का ये सपाट जवाब सुनकर मिस्टर और मिसेस ओबेरॉय दोनों का ही दिल बैठ सा गया था, लेकिन आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए और अपने माता पिता को कार तक जाने को कहकर वो सीधा जाकर सिद्धार्थ के गले से लिपट गई और उसकी ओर देखकर हल्की नाराजगी से बोली, सिद्धार्थ, आखिरकार कब तक तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करते रहोगे? हमारी सगाई हो गई है और तुमने अब तक मुझसे प्यार से दो लाइन भी नहीं बोली हैं। इस वक्त आकांक्षा का लहजा बहुत ही ज्यादा धीमा और मीठा था, लेकिन आकांक्षा ने जो महंगे परफ्यूम लगाई हुई थी वो सिद्धार्थ को बड़ी ही इरिटेटिंग लग रही थी। आकांक्षा का पास रहना वो पसंद ही नहीं कर पा रहा था। वहीं अब जैसे ही झरक कार में बैठने जा रही थी और उसने आकांक्षा को इस तरह से सिद्धार्थ को गले से लगाए हुए देखा, न जाने क्यों झलक को बहुत गुस्सा आया। सिद्धार्थ भी झलक को देख चुका था, लेकिन तब तक झलक सीधा जाकर कार में बैठ गई थी। वहीं सिद्धार्थ आकांक्षा को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो उसे घूरते हुए बोला, आकांक्षा, ये क्या बचकानी हरकत है, मुझसे दूर रहकर बात किया करो, मुझे इस तरह से चिपकती हुई लड़कियां जरा भी पसंद नहीं है। अब जैसे ही सिद्धार्थ ने थोड़ा सख्त आवाज में ये बोला, आकांक्षा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और वो रोने लगी थी। अब आकांक्षा को इस तरह से रोता हुआ देखकर सिद्धार्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अचानक आकांक्षा के चेहरे में उसे झलक का चेहरा दिखाई देने लगा और अचानक सिद्धार्थ ने उसके गालों को हल्का सा छूकर उसके आंसुओं को साफ किया और उसके कमर को हल्का सा दबाते हुए बेहद शांत आवाज में बोला, तुम्हें इस तरह से रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे भी टाइम चाहिए, मैं भी काम के प्रेशर में हूँ, मैं अभी शादी वगैरह नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे ही सिद्धार्थ ने इस तरह से बड़े ही प्यार से ये बात बोली, आकांक्षा तो बहुत खुश हो गई थी और उसने तुरंत मौका देकर सिद्धार्थ के गालों पर एक किस कर दिया था और बेपरवाही से बोली, ठीक है, तुम अपना टाइम लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये बोलकर वो सीधा जाकर कार में बैठ गई थी। वहीं झलक ने गाड़ी के राइट साइड मिरर से ये सारे सीन देख चुकी थी और मन ही मन सिद्धार्थ को गालियां दे रही थी। वहीं सिद्धार्थ अब आकांक्षा को इस तरह से अपने गालों पर किस करना न जाने क्यों कुछ पसंद नहीं आया और सिद्धार्थ ने अपना रुमाल निकालकर अपने गाल को साफ कर लिया और सीधा उस रुमाल को डस्टबिन में फेंक दिया, मानो कि वो कोई कूड़ा हो, और सीधा जाकर कार में बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, उसने देखा कि झलक आगे वाली सीट पर बैठी हुई है। तब सिद्धार्थ झलक को देखकर बोला, चुपचाप आकर पीछे सीट पर बैठो। अगले ही पल झलक तपाक से बोली, मैं यहीं ठीक हूँ और मेरा पीछे बैठने का कोई इरादा नहीं है, झलक ने रूडली वॉइस में जवाब दिया। वहीं सिद्धार्थ का असिस्टेंट रोनित, जो कि कार चला रहा था, वो समझ चुका था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि उसके बॉस का चेहरा काफी ज्यादा सख्त हो गया था और अपने बॉस के खतरनाक चेहरे को देखकर वो अब थोड़ा डरते हुए झलक की ओर देखकर परेशानी भरी आवाज से हड़बड़ी में बोला, झलक मैडम, आप प्लीज पीछे बैठ जाइए, क्योंकि आगे वाली सीट में कुछ प्रॉब्लम है। सिर्फ झलक ने उसे सीट को अच्छी तरह से चेक किया था, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी। लेकिन फिलहाल अब रोनित के कहने पर वो जाकर पीछे बैठ गई। तब उसने एक बार भी सिद्धार्थ की ओर नहीं देखा। सिद्धार्थ को उसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी थी। तभी कुछ दूर कार चलने पर गाड़ी में पूरी तरह से खामोशी रही, लेकिन कुछ दूर गाड़ी चलने पर रोनित कुछ याद करते हुए एकदम से बोला, झलक मैडम, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए नया फोन और आपका जो पुराना सिम था वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो आपके ठीक पीछे वाली सीट पर रखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिए। अब जैसे ही झलक ने ये सुना, उसने तुरंत फटाफट से अपने नए फोन में सिम डालकर चेक करने लगी थी। वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और फिर हंसते हुए बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर रोनित, आपने मेरी बहुत मदद की। तब रोनित ने जल्दी से बोला, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरे काम का हिस्सा था जिसे बॉस ने मुझे करने दिया था। अब ये सुनकर झलक ने मुंह बिचका लिया और सिद्धार्थ को एक थैंक यू तक नहीं बोला। वहीं सिद्धार्थ मन ही मन में सोच कर रह गया था कि मेरे असिस्टेंट को तो झलक थैंक यू बोल रही है, लेकिन मुझे एक छोटा सा हेलो भी नहीं किया। लेकिन फिलहाल जल्दी ही झलक ने अपना फोन स्विच ऑन किया था और जैसे ही उसके सिम चालू हुए, अचानक कितने सारे टेक्स्ट मैसेज, फोन मिस कॉल और मैसेज सब शो होने लगे थे। सबसे ज्यादा मैसेज उसमें आर्यन के थे, जिसमें उसने साफ साफ लिखा हुआ था, तुम्हारा जो दोस्त है अर्जुन, उसे ऑलरेडी ओबेरॉय परिवार ने खरीद लिया है, वो तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, उसे और ब्लॉगर को भी ओबेरॉय परिवार ने खरीद लिया है, जिसके साथ मिलकर तुम पूरे परिवार का पर्दाफाश करना चाहती थीं। और तुम कहाँ हो झलक, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ।